पृष्ठ संख्या 84, निर्वैयक्तिकता और सामाजिक दृष्टि। निराला ने अपनी कविताओं में निजी सुख दुख को बहुत कम अभिव्यक्ति दी है। अधिकतर उनकी कविता वस्तुनिष्ठ रही है। उन्होंने प्रगीतों में भी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिवनेस सुरक्षित रखी, जो हिंदी गीत काव्य के क्षेत्र में एक नई बात थी और जिसके कारण उन्हें नवगीत के प्रवर्तक के रूप में जाना माना गया। यो निराला ने अपनी कविता से स्वयं को पूरी तरह निर्वासित नहीं किया है, कभी ऐसा कर भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो वह अपनी रचना में अपना मन खोलता ही है। सरोज स्मृति के अंत में निराला भी खुले हैं अपनी अफाट वेदना और अपने को अधिक निरुद्ध रख पाने में, स्वयं को अक्षम पाकर। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। राम की शक्ति पूजा में वह राम के आत्मधिक्कार के माध्यम से स्वयं सामने आ जाते हैं। पृष्ठ संख्या 85। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। वन बेला में यह पराजय बोध सीधे सीधे व्यक्त हुआ है। हो गया व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। आत्म अभिव्यक्ति के ऐसे स्थल अनेक प्रगीतों में भी मिलते हैं। एक, हमारा डूब रहा दिन मान। दो, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध वेला। तीन, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्योतन रह गया। कहा जा सकता है कि आत्म व्यंजना की दृष्टि से निराला का मूल स्वर वेदना का है, क्योंकि उन्हें जीवन से वेदना ही मिली थी। किंतु निराला अपनी इस वेदना या कि आत्म करुणा के ही कारण नहीं पहचाने जाते, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि उनकी पहचान उनकी आत्महनता प्रकृति से ही बनती है। सरोज स्मृति इसका एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इलियट ने भोक्ता और सर्जक के पृथकत्व को कलाकार की पूर्णता का द्योतक माना है। हिंदी में इस पार्थक्य का निर्वाह केवल निराला कर सके हैं। एकमात्र पुत्री के निधन का प्रसंग है और निराला साहित्य जगत की विसंगतियों तथा सामाजिक जीवन की रूढ़िगत विडंबनाओं के चित्रण में दत्तचित्त हो जाते हैं। प्रायः ही विनोद और परिहास की मनोवृत्ति भी प्रमुख हो जाती है। करुणा और परिहास का, गंभीरता और अगंभीरता का यह सह संयोजन, यह परस्पर विरोधी शिल्प अन्यत्र शायद ही कहीं देखने को मिले। उनकी वस्तुनिष्ठता या आत्मनिषेध का सर्वाधिक ज्वलंत रूप यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ वे अपनी ही पुत्री के यौवन आगमन तथा उसके सौंदर्य का चित्रण करते हैं। पुरानी मानसिकता को इतना बड़ा आघात शायद ही किसी कवि ने दिया हो। हिंदी में तो कोई दूसरा कवि हुआ ही नहीं। इस सीमा तक तटस्थता तथा आत्मनिरपेक्षता का निर्वाह कर पाना निराला के ही बस की बात थी। पुत्री का प्रकरण होने के कारण निराला की सामाजिक दृष्टि विवाह प्रथा की रूढ़ियों एवं विसंगतियों पर केंद्रित है। अन्य अनेक कविताओं, नए पत्ते, बेला, अड़िमा में उनकी सामाजिक दृष्टि के वैविध्यपूर्ण आयाम मिलेंगे। सरोज स्मृति में मुख्य प्रकरण तो पुत्री सरोज के विवाह का है, किंतु उससे पहले स्वयं निराला के दूसरे विवाह का प्रसंग आता है। निराला की कुंडली में दो विवाहों का योग था। निराला इस विषय में स्वयं ही कहते हैं, पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह हंसता था, मन में बड़ी चाह खंडित करने को भाग्य अंक देखा भविष्य के प्रति अशंक। निराला दूसरे विवाह के विरुद्ध थे, अतः जब बात पक्की होने का क्षण आता है तो सामने एक दूसरी ही दृश्य उपस्थिति हो जाती है। सरोज उस समय 2-2.5 वर्ष की थी। निराला ने पृष्ठ संख्या 86 भाग्य अंक को खंडित करने के संकल्प के साथ अपनी कुंडली उसे खेलने के लिए दे दी। विवाह के प्रस्तावक तथा निराला की सासू जी, जो इस संबंध को लेकर अति उत्साहित थी, जब निराला के पास आते हैं तो उस समय सरोज कुंडली की चिंदियों पर बैठी खेल रही होती है। निराला कुछ कहते नहीं, केवल उसकी दिशा में संकेत भर देते हैं। संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न देखने लगी वह विस्मय भर, तो बैठी संचित टुकड़ों पर। कुंडली मिलाने की परंपरा पर भी यहाँ चोट की गई है। यद्यपि वास्तविकता यह है कि निराला दूसरा विवाह नहीं करना चाहते, सरोज के विवाह के प्रकरण में निराला ने दो कुरीतियों को रेखांकित करते हुए उनका प्रतिनिधान किया है। पहली कुरीति कन्या के पिता को वर के पिता के आगे सर्वथा नग्न समझना कि उसे वर के पिता के चरणों को छूना ही, चाहे वह कितने ही गंदे अथवा दुर्गंधपूर्ण हो। पर पूर्ण रूप प्राचीन भार ढोने में हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय उतनी जो देखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार, डॉट 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 घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूंजू ऐसी नहीं सकती। दूसरी कुरीति जो सर्वाधिक जानलेवा है दहेज प्रथा, निराला दहेज देना मूर्खता समझते हैं और वे उसे विवाह पर किए जाने वाले अपव्यय का ही एक अंग मानते हैं। डॉट 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 दहेज देकर मैं मूर्ख बनूँ यह नहीं सुघर, बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूँ नहीं ऐसा सुसमय। निराला अपने इस विचार को चरितार्थ भी करते हैं, वह केवल साहित्यकों को आमंत्रित करते हैं, विवाह वे स्वयं संपन्न कराते हैं। यह कविता भारतीय समाज में होने वाले वैवाहिक अपव्ययों के संदर्भ में एक बड़ा तथा व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करती है। अंधेरे में से सामाजिक विसंगतियों के प्रति संकेतों का नितांत अभाव नहीं है। मुक्तिबोध पिता और माता को घर से बाहर करने की अपसंस्कृति का उल्लेख करते ही हैं, अपने हित चिंतकों को गुहावास देने का अपराध भी स्वीकार करते हैं और उनमें निराला जैसा व्यर्थता बोध तथा आत्मधिक्कार भी है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, किंतु उनकी पृष्ठ संख्या 87 ए तथा इस श्रेणी की सारी बातें किसी अन्य वास्तविकता की ओर संकेत करने वाली हैं। उन्हें व्यंजक तथा प्रतीकात्मक कहा जा सकता है। वस्तुतः मुक्तिबोध लेखकीय स्वातंत्र्य एवं प्रतिबद्ध विचार सरणी से जुड़े रचनाकार हैं। यह एक बड़ा तथा महत्वपूर्ण अंतर्विरोध है जो मुक्तिबोध जो अभी तक त्रिशंकु बनाए हुए है। रचनाकार जब अपने विषय में दो टूक वक्तव्य नहीं दे पाता और प्राचीनतम तथा नवीनतम दोनों में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने की महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होता है तो उसकी नियति त्रिशंकु होने की ही होगी। वास्तविकता यह है कि अंधेरे में के आधार पर मुक्तिबोध को सामाजिक संदर्भों का कवि मानना अप्रासंगिक होगा।